ओम शांति। जो हमारी श्रृंखला चल रही है आर्ट ऑफ डिटैचमेंट, तो उसमें हमें जो मिला था नाम मान से अंश, नाम मान से अंश यानी मुक्त कैसे बने, डिटैच कैसे बने, तो उस पर हम चर्चा करेंगे कि देखा जाए तो ब्राह्मण परिवार में यानी दिनों दिन समय अनुसार मानस्यान की बीमारी बढ़ती जा रही है। और ये बीमारी की एक ऐसी विशेषता है कि जिस व्यक्ति को ये बीमारी होती है उसको पता भी नहीं लगता कि ये बीमारी से मैं ग्रस्त हूँ। तो इस टॉपिक के हम तीन विभाग में ये करेंगे। एक तो नाम स्यान की बीमारी को यानी निशानी क्या है, अपन को कैसा पता चले कि उसको बीमारी लगी, बाद में आती कैसे धीरे धीरे और उससे मुक्त कैसे हो जाए। तो सबसे पहले अपन निशानी देखेंगे कि यानी निशानी क्या है उसकी। तो उस पर यानी किसी का भी समझो, कुछ हर एक व्यक्ति ये भी चाहता है कि मेरा मान सम्मान हो, मेरी स्तुति हो, लेकिन उसकी स्तुति में या मान सम्मान में ये थोड़ी कमी हो गई तो एकदम भड़क जाता है, रूठ जाता है और उसकी मान सम्मान किया तो बहुत खुश हो जाता है। और यदि उसके सामने यदि उससे छोटे पद पोजीशन वाले व्यक्ति का यदि महिमा की तो वो उसको बिल्कुल ही पसंद नहीं होता, क्योंकि वो उसकी बाद में कमी कमजोरी ढूंढता ही रहता है कि कई कमी कमजोरी इसकी मिल जाए और अपने गुणों का यानी मियाँ मिट्टू बनकर यानी सोए में यानी वो गुणगान करता रहता है। दूसरी है कि यदि उसको किसी ने सेवा दी निमित्त आत्मा ने और सेवा में उसने बहुत सफलता प्राप्त की और यदि उसको मान सम्मान नहीं दिया, स्टेज पर नहीं बुलाया, सेवा समाचार सुनाते समय यदि उसका नाम नहीं लिया तो वो बाद में क्या करते, वो सेवा करना ही छोड़ देते, दोबारा वो सेवा करेगा नहीं। और जब सेवा करते समय यानी सेवा में यदि कोई दोस्त है उसके, किसी व्यक्ति ने शुभ भावना समझ करके उसको बताया कि यदि ये दोस्त निकल जाए सेवा का तो वो सेवा और भी अच्छी हो सकती है, सेवा को चार चांद लग सकती है। तो यदि कोशिश की किसी ने तो वो उसका मित्र बनने के बदले क्या शत्रु बन जाएगा, यानी वो उसको फील होता है यानी उसका दोस्त निकाला। तो और एक तीसरी विशेषता है कि सॉरी उसकी निशानी है कि कोई वो यानी मेरी कोई निंदा ग्लानी करते है का ये यानी ढूंढता ही रहता है कि इसको उसको पूछता रहता है किसी ने मेरी निंदा तो नहीं की या कोई ग्लानी तो नहीं की। और यदि हाँ और यदि उसको पता ही चला कि किसी ने मेरी निंदा या ग्लानी की है तो कि किसी ने पता है कि अलाने फलाने व्यक्ति ने आपकी की बा, तो वो उसको छोड़ेगा नहीं, बाद में उसकी कमी कमजोरी देखते रहेगा और जब भी उसकी कमी कमजोरी दिखेगा तो 20 नाखून का जोर लगा के उसको वह नीचे गिराने का प्रयत्न करेगा। तो ये होगी निशानी। तो अभी ये बीमारी आती कैसी है नाम मान सहन की, इस पर हम थोड़ी चर्चा करेंगे। तो जब हम ब्राह्मण बनते तो उस समय ये बीमारी नहीं रहती, मान सहन का कोई ये नहीं रहता, यानी वो निस्वार्थ भाव से सच्चे दिल से सेवा करता है और जो भी सेवा करता है तो उसको प्रभु अर्पण कर देता है कि बाबा ने मुझे निमित्त बनाया है, मेरे द्वारे बाबा करण करावन हार मैं करता हूँ, इस प्रकार का उसका भाव रहता है और शुद्ध अंतकरण से सेवा करता है। और बाद में क्या होता है, कुछ समय के बाद धीरे धीरे उसको ही लगता है कि मैंने इतनी सेवा की, मेरा कोई नाम भी लेना चाहिए या मेरा कोई मेरे को मान सम्मान देना चाहिए, तो ऐसा उसको थोड़ा ये होता है। तो उसमें सबसे पहले यानी एक मैपन की बीमारी आ जाती है उसके अंदर, मैपन और अभिमान। जैसे जो उन्होंने कुछ सेवा की, सेवा करने के बाद उसने बहुत कुछ सफलताएं मिल गई तो उसको लगता है कि मेरे कारण वो सफलताएं मिली, मैंने सेवा की इसी कारण उतने VIPs निकले, दूसरे से निकल नहीं सकते थे मेरे कारण वो निकल गए, यानी मेरा भाषण करना बहुत अच्छा है, मेरा भाषण सभी पसंद करते है, ऐसा उसको यही होता है। मैं जहाँ पर भी सेवा करता हूँ वहाँ पर अच्छा यानी रेस्पॉन्ड मिलता है, लोग मेरा यानी सेवे से अच्छे अच्छे VIP निकलते हैं, मेरा हैंडलिंग पावर बहुत अच्छा है, मैं कोर्स बहुत अच्छा कर सकता हूँ, तो इस प्रकार से मैपन आ जाता है उसके अंदर, और ये मैपन के भ्रम में वो जीता है। इस पर मुझे कहानी याद आ रही है कि वो कहानी सुनाना चाहता हूँ कि रामायण की है कि जब रावण ने सीता माता को चुरा कर ले गया और प्रभु रामचंद्र ने क्या किया, हनुमान जी को यानी माता सीता का पता लगाने के लिए उसको भेजा। तो जब हनुमान जी लंका में गए तो उसको पता लगा कि रावण ने माता सीता को यानी अशोक वाटिका में रखा एक पेड़ के नीचे, तो वो उसी पेड़ पर यानी ऊपर छुपके से छिपकर बैठ जाता है। बाद में देखता है वो कि उतने में रावण तलवार लेकर वो माता सीता के पास आता है और उसे बोलता है कि मैं लंकापति रावण हूँ, मैं राजा हूँ, मेरे पास सबको अथॉरिटी है, तो आप मुझे पति के रूप में स्वीकार करो। तब वो सीता माता बोलते हैं उसको कि अरे दुष्ट, मैं तो अपने यानी राम को ही अपना सब कुछ ये किया है, क्योंकि सपनों में भी मैं राम के सिवा किसी का यानी नाम नहीं लेती हूँ, या तू चला जाना तेरा विनाश हो जाएगा। तो उस समय हनुमान जी ऊपर बैठे थे, उसको ऐसा भ्रम होता है कि इस समय सीता माता को मेरे ऊपर कोई बचा नहीं सकता, क्योंकि मैं रावण की तलवार खींच के इसके सिर उड़ा दूँ। बस दूसरे क्षण में वो देखता है कि मंदोदरी रावण का हाथ पकड़ लेती है और उसी कारण सीता माता बच जाती है। तो पहले क्षण में उसको भ्रम होता है कि मैं भी अभी सीता माता को बचा सकता हूँ, मेरे ऊपर कोई बचा नहीं सकेगा, लेकिन मंदोदरी द्वारे वो बच जाती है। तो ऐसा भी हम जो मानस्यान के भ्रम में जो मैपन आता है, जिस आत्मा को अभिमान आता है कि मेरे ऊपर कोई सेवा कर नहीं सकता, मैं करूँगा तो वो सेवा सक्सेस हो जाएंगी, वो कार्य यशस्वी हो जाएंगे, ऐसा भ्रम रहता है। मगर उनको ये पता नहीं होता कि कार्य भी परमात्मा का है और करण करावनार भी शिव बाबा है, केवल मैं एक निमित्त हूँ, मेरे द्वारे करा रहा है। और बाबा भी उस बच्चे द्वारे क्यों करता है, क्योंकि उसका भाग्य बनना चाहिए, भाग्य बनने के लिए बाबा उसके द्वारे वो सेवा करता है। तो ऐसा मैपन और अभिमान के पहले ही आ जाता है। दूसरा यानी भूत ही समझो, पहला भूत यानी मैपन और अभिमान का आ जाता है धीरे धीरे। बाद में दूसरा ईर्ष्या का, ईर्ष्या यानी अभिमान की छोटी बहन कहती है उसको, तो वो उसके अंदर प्रवेश करती है। तो ईर्ष्या के बारे में किसी ने ऐसे कहा कि ईर्ष्या को मत्सर भी कहते हैं, मत्सर मत्सर मराठी में मत्सर भी कहते हैं उसको, ईर्ष्या को। तो किसी ने कहा कि एक है मच्छर और एक है मत्सर, तो जैसा मच्छर भी काटता है तो वैसे यानी मत्सर भी यानी ईर्ष्या भी काटती है। लेकिन मच्छर ने काटा तो उसका इलाज हो सकता है, यानी कुछ दवाई वगैरह अपन ले सकते, वो इंसान ठीक हो सकता है। मगर ये मत्सर रूपी ईर्ष्या ने किसको काटा तो वो ठीक नहीं हो सकता है, क्योंकि उसके लिए बहुत ये लगता है, उसको ठीक होने के लिए बहुत कुछ पुरुषार्थ करना पड़ता है। तो ये ईर्ष्या है ये आती कैसे धीरे धीरे, यानी ये आने का कारण क्या है कि समझो एक व्यक्ति है उसको बार बार वरिष्ठ निमित्त आत्माएं उसको ही सेवा देती है और उस सेवा में वो अच्छे तरह से सेवा करते हैं, वहां पर उसको बहुत कुछ सफलता मिलती है और उसकी महिमा होती है। मगर कुछ दिन के बाद क्या होता है, वरिष्ठ निमित्त जो आत्मा है इसके बदले दूसरे भाई को वो सेवा दे देती है और वो सेवा करता है तो उस सेवा इससे 10 गुना वो अच्छी सेवा करता है। तो चारों तरफ जब इसकी महिमा होती है तो फिर इसको ईर्ष्या होती है कि जितनी उसकी महिमा हो रही है तो वो फिर उसकी अवगुण ढूंढता रहता है और कहीं ना कहीं जब उसकी अवगुण मिलती है तो उसको नीचे गिराने का प्रयत्न करता है। तो ये इस प्रकार आती है। और एक मैं मिसाल के तौर पर बताना चाहता हूँ, इसमें यदि किसी को ठेस भी पहुंचेंगे तो ऐसा बुरा नहीं मानना क्योंकि जैसा समझिए एक डिपार्टमेंट का इंचार्ज है और एक उसका सेवा सहयोगी है। जब कोई तीसरा व्यक्ति आता है और वो एक अंदर चीज है वो इंचार्ज ने देने के बगैर उसके सेवा साथी दे देता है, तो उसके बगैर पूछे बगैर वो दे देता है। तो जब उसको पता चलता है इंचार्ज को तो फिर उसको लगता है कि मेरे पूछे बगैर वो चीज आपने क्यों दिया है। फिर उसके मुख से ऐसे शब्द निकलते हैं कि मैं इंचार्ज हूँ, मेरे को आपने पूछना चाहिए, मेरे को न पूछते वो चीज क्यों दी आपने। तो ऐसे उसको डांट पटकार लगाती है। दूसरी बात होती है कि कोई तीसरा व्यक्ति जब डिपार्टमेंट में आ जाता है, एक इंचार्ज है उसका सेवा साथी है वहां पर, तो ये कहते डिपार्टमेंट के बारे में कोई राय सलामत है या कोई ऐसी सेवा है तो वो इंचार्ज को पूछेंगे, बदले यदि उसके सेवा साथी को पूछेगा तो उसको अच्छा नहीं लगता, अपना अपमान हो गया ऐसा लगता है। और वो क्या करते हैं, पूछने वाले को डांट लगाती है कि मैं इंचार्ज हूं, मेरे को क्यों नहीं पूछा आपने, उसको क्यों पूछा। तो ये दूसरा ईर्ष्या का वार है। और तीसरा ऐसा होता है कि कभी कभी यानी जो इंचार्ज रहता है उसका सेवा साथी रहता है तो वो उससे भी एक्टिव रहता है, हर क्षेत्र में वो ज्यादा डेवलप प्रगति करता है तो, और उसकी चारों तरफ महिमा होती है। तो यदि वो महिमा यदि इंचार्ज ने सुनी तो उसको अच्छा नहीं लगता है, तो उसका वो जैसी उसकी महिमा कोई करते तो उसका सिर दर्द शुरू हो जाता है, बाद में उसका पेट दर्द भी होता है और वो सोचते सोचते बीमार पड़ जाता है। तो इस प्रकार जो ईर्ष्या है इस प्रकार उस पर वार करती है। तो इस पर एक मैं जोक्सी रूप में एक कहानी बताना चाहता हूं कि एक सेठ जी रहता है, उसके पास एक माता रहती है काम धंधा करने वाली, यानी झाड़ू पोछा करने के लिए आती है, उसके दो बच्चे रहते हैं और सेठ जी के भी दो बच्चे रहते हैं। तो वो माता है वो अपने बच्चे को यानी मेहनत करके पढ़ाती है, पढ़कर वो बच्चे बहुत होशियार रहते हैं तो वो एक अच्छे ऑफिसर बन जाते हैं। और ये सेठ जी के जो बच्चे रहते दो वो यानी अभी पैसे वाले के बच्चे तो बिगड़े हुए रहते हैं ना, वो यानी मांस यानी पैसे के कारण, हाँ यानी सभी नहीं रहते, हाँ चौक से। तो फिर उसके कारण यानी वो अपने जीवन में कुछ भी ठीक से पढ़ते नहीं, यानी माद मदिरा ये थे खा कर पी करके वो यानी अपना जीवन बर्बाद करते। और ये सेठ जी का पैसा जब बड़े हो जाते तो सारा पैसा उसी में वो खर्च कर डालते। और जो माता के बच्चे रहते वो अच्छे ऑफिसर बन जाती है, ऐसे धन कमाते। तो बाद में वो लोग सेठ जी के साइड में एक अपनी अच्छी बिल्डिंग बनवा लेते। जब वो सेठ जी बार बार देखता है कि मेरे घर में काम धंधा करने वाली माता की यानी जितनी प्रगति हो गई बा, उसने इतना बिल्डिंग बनाया, तो हर बार उसको ईर्ष्या होती है वैसी। तो वो देख देख कर हर दिन देखता है उसकी यानी बढ़ती हुई सब कुछ मानस यानी बढ़ता हुआ उसकी प्रगति होती है वो सब देखते हुए इसको एकदम ये होती, इसकी रात की नींद भी फिर जाती है, क्या करे क्या नहीं करे, यानी हर दिन वही सोचता रहता है। तो बाद में ऐसे करते करते एक सन्यासी के पास जाता है वो, कि उसको बोलते बाबा जी मैं क्या करूं क्योंकि मेरे की नींद भी नहीं आती, बोलते मेरे को और मेरे को ऐसी ईर्ष्या हो गई, बोलते कि मेरे घर में काम धंधा करने वाली वो माता इतनी बढ़ गई है, इतनी वो अमीर हो गई और मैं गरीब हो गया, मेरे बच्चे सब मेरी कमाई चट कर दिया बोलते। तो वो सन्यासी बोलते आप ऐसा करो कि जंगल में जाके तपस्या करो बोलते, यानी भगवान अगर आपको प्रसन्न हो गया तो कुछ दे देंगे, उससे आपकी समस्या सॉल्व हो जाएंगी। फिर वो वहां पर दिन रात ऐसी बहुत तपस्या करता है, तपस्या करने के बाद भगवान उसको प्रसन्न हो जाता है। भगवान बोलते बेटा बोल आपको क्या चाहिए अभी, तो उसको बोलते अभी मांगना तो चाहिए उसको, क्या मांगे मगर उसको ये होता है कि जिसका यानी सब साफ होना चाहिए, वह सुपड़ा साफ होना चाहिए उसका, यानी वो जो माता है उसका वो यानी बहुत ही आगे तो उसका विनाश होना चाहिए, मगर उसके पहले भगवान बोलता है कि मैं जो भी वरदान दूंगा आपको मांगेंगे तो उसके डबल आपके पड़ोसी को मिल जाएगा। फिर और भी उसका सिर भारी हो जाता है, क्या करे तो इसका तो सर्वनाश होना मैंने सोचा था, तो फिर ये तो डबल हो जाएगा, यदि मैंने एक गाड़ी मांगी तो इसकी दो दो गाड़ियां हो जाएंगी, पहले एक गाड़ी उनके पास, तो फिर बोलते यदि बंगला मांगा तो इसके और भी बंगला अच्छा और दो बंगले हो जाएंगे, तो फिर क्या मांगे धन संपत्ति मांगे, तो पहले उसके पास बहुत कुछ धन संपत्ति है, तो फिर सोचता है बाद में सोच सोच कर उसको देखो ऐसी एक युक्ति सोचती है। तो बाद में वो भगवान को बोलते सही में मैंने जो मांगे वो आप दे देंगे क्या, बोलते भगवान बोलते अरे मैं उसके लिए तो है वो आपको देंगे, लिए बोलते मैं झूठ थोड़े बोलता हूँ दे दूंगा बोलते आपको। तो बोलते ऐसा करो मेरा एक आंख फोड़ दो बोलते, तो वो क्या हो जाएगा इसकी एक आंख फोड़ दो और एक काम कर दो बोलते मेरे आंगन में एक अच्छे सा कुआ बना दो, यानी बिन वो उसको क्या रहते है हाँ तो क्या बोलते वो नहीं बांधो बोलते उसको ऐसा ही रखो उसको खुला रखो ऊपर से, तो देखो यानी भाव क्या उससे क्या हो जाएगा, इसके एक आंख फूट गए तो उसके दो फूट जाएंगे और वो अंधा हो जाएगा, यानी व्यक्ति देखो एक कहा यानी जोक्स का जोक्स है नहीं वाला हाँ जोक्स है ना उसमें सब कुछ हो सकता है, भगवान सब कुछ कर सकता है। तो इस प्रकार है, देखो ईर्ष्या वह जो व्यक्ति होता है उसको यही नहीं होता कि चैन से वो बैठता नहीं, खुद भी नहीं बैठता, दूसरे को भी बैठने नहीं देता, और वो क्या कर रहा है जिसका उसको ये नहीं रहता कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो इस प्रकार है ईर्ष्या वह व्यक्ति यानी अपना भी और दूसरे का भी सर्वनाश कर देता है, यानी ये होता है। बाद में क्या होता है, धीरे धीरे ईर्ष्या के बाद उस व्यक्ति के अंदर बदले की भावना आ जाती है। तो बदला ऐसी चीज है कि व्यक्ति अपने अंदर में विनाश का एक रचना रचते है और उसमें स्वयं का और दूसरे का भी सर्वनाश कर लेता है। तो उसके इसमें भी अभी इतिहास में अपन देखेंगे जो भी युद्ध महायुद्ध हुए ये सारे बदले की भावना के ही कारण से हो गए। तो बदले ईर्ष्या के बाद बदले की भावना और बाद में विवेकहीन बदला इतना ये हो जाता है तीव्र कि वो व्यक्ति विवेकहीन बन जाता है, यानी बुद्धि भी उसी काम नहीं करती क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार जो नाम मान ध्यान से जो ग्रस्त आत्मा है समझो उसके अंदर धीरे धीरे ये ऐसे नाम मान का अभिमान का और ईर्ष्या का और बदले की भावना इस प्रकार से धीरे धीरे भूत सवार हो जाती और उसी कारण वो न खुद का कल्याण कर सकता है ना दूसरे का कर सकता है। तो अभी हम देखेंगे कि मैंपन से मुक्त कैसे बने। उसके लिए जैसे बाबा ने बताया है कि मैं सर्व नाम मान से परे हूँ, तो जैसा बाबा है समझे इतना विश्व कल्याण है, विश्व की सहरे यानी इतनी सेवा करता है वो, मनुष्य से हरेक आत्मा को देवता बनाता है। तो बाबा कभी बोलता है ना कि मेरा नाम लेना चाहिए कि मेरा मेरे को मान देना चाहिए, क्योंकि हर वक्त क्या करता है वो बच्चे को ही आगे रखता है। तो वैसा हमें भी क्या करना है, यानी मान श्यान से न्यारे बनना है, इसका त्याग करना है। तो मान श्यान से हमको न्यारा बनना है। तो ये नाम और मान मांगना ये कि अल्पकाल का भिखारीपन है। तो बाबा को तुम दाता बच्चे हो, देने वाले हो, आप मांगने वाले नहीं हो। तो हम यह अल्पकाल के जी मांगना है इसका त्याग करना है। जब हम ये त्याग करेंगे तब क्या हो जाएगा, हमारा भाग्य बनेगा। तो बाबा ही कहते कि जो भी हम आप बच्चे सेवा करते हो तो वो सेवा क्या करो, करो और उसमें जो सफलता मिलती है वो प्रभु को अर्पण कर दो। तो उसमें क्या हो जाएगा, हमें मान नहीं लगेगा कि मुझे कुछ मांगने का ये नहीं रहेंगे, यानी दे दाता हो देते चलो। और भगवान भी देखो हमारे प्रति कितने रहम दिल है, कितने स्नेह प्यार करते बच्चे को, क्योंकि विश्व के कल्याण की जो भागडोर है वो हमारे हाथ में दे दिया बाबा ने। तो हमें क्या करना, यानी बाबा बोलते कि आप सुख शांति में दुनिया बनाने के निमित्त हो आप, तो इसलिए आप शांति दूत हो, आप खुदाई खिदमतगार हो। तो इसके कारण हमें वो स्मृति रखनी है हमारी कि हम कितने ये है। तो जैसा जिसके कारण जैसा शिव बाबा की महिमा होती है तो उसके साथ साथ शालिग्राम के रूप में क्या होती है, हमारी महिमा होती है। तो इस प्रकार जैसा बाबा विश्व कल्याण है वैसे हमें भी क्या करना है, विश्व का कल्याण करना है। जैसा कहते हैं ना कि जैसा जो सच्चा सच्चा सेवाधारी वो होता है कि जो दूसरे को सदैव यानी ऊंचा उठाने के लिए आगे बढ़ता है, हमें हर एक आत्मा को ऊंचा उठाने के लिए आगे बढ़ना है, उसका कल्याण होना चाहिए, ये भावना रखनी है अपने अंदर भी। इसलिए बाबा बोलते हैं मनसा वाचा कर्मणा, ये तीन सेवा है, इन तीन सेवा द्वारे हमें सबका कल्याण करना है। जैसा कर्मणा सेवा है तो कर्मणा सेवा का मेन आधार क्या है, यानी हमारे कर्म में और व्यवहार में क्या हो, यानी कुशलता हो, और कुशलता के साथ साथ सत्यता भी चाहिए हमारे अंदर। तो हम क्या करेंगे, सत्यता रही तो सबका प्रिय बन सकते है, और कर्मणा सेवा द्वारे यानी जो भी लोग हमारे संबंध संपर्क में आएंगे उनको हम स्नेह प्यार दे सकते हैं। यदि हम प्यार देंगे तो रिटर्न में हमें प्यार मिलेगा। दूसरा है वाचा सेवा। वाचा सेवा से क्या करने है, हमें जैसा आत्मा और परमात्मा इन दोनों को जोड़ने का सेतु क्या है, हमारी वाणी है। तो वाणी द्वारे हम सभी विश्व के आत्माओं को बाबा का संदेश दे सकते, उसका कल्याण कर सकते, और हमारे वाणी में भी क्या मिठास होगा। मीठी वाणी का ये रहता है कि वो टूटे हुए दिलों को जोड़ सकते मीठी वाणी। तो वैसे हमें अपनी मीठी वाणी द्वारे किसी का दिल नहीं जोड़ तोड़ना है, तो सभी का दिल यानी जोड़ना है। तो ये सेवा करनी है। और मनसा सेवा, क्योंकि मनसा सेवा वाचा सेवा से और कर्मणा सेवा से सर्वश्रेष्ठ सेवा है, क्योंकि विश्व के किसी भी कोने में कोई आत्मा है उसकी हम सेवा कर सकते, उसके दुख दूर कर सकते। बाबा ही बोलते हैं ना कि आप पूर्वज हो, क्योंकि आज विश्व की सभी आत्माएं यानी दुखी है, वो हम आत्माओं के जड़ मूर्ति के आगे प्रार्थना करती है कि हम मांगते कि हमें सुख दो शांति दो, तो हमें भी उस मूर्ति में रह करके हम इस विश्व के आधार मुहूर्त है ऐसा समझ करके कुछ न कुछ हमको विश्व की आत्मा को देना है न कि मांगना है। तो इस प्रकार हमें दूसरे को दे करके अपना और दूसरे का जीवन कैसा बनाना है, एक यानी जीवन संगीतमय बनाना है। दूसरा जैसा गुलदस्ता है, सुगंधित फूलों का गुलदस्ता बनना है हमें, और जो सुनहरी उसे की किरण बन के सभी का दुख दूर करना है हमें, न कि यानी कांटे की झाड़ी बन के किसी का अकल्याण करना है। तो इस प्रकार हमें यानी हर एक आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना रखेंगे, सबका कल्याण की भावना रखेंगे, तो हमारे अंदर जो नाम मान शान का जो अहंकार रहता है वो अहंकार समाप्त हो जाएगा और हम एक श्रेष्ठ दिव्य गुणधारी देवता बनने के योग्य बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। हाँ, तो उसके लिए हम शुभ भावना देंगे ना कि उसके
आपके डिपार्टमेंट में है दूसरा कोई साथी जो नाम मान शान के दिन रात पीछे, आप नहीं है, अब उसके लिए आप क्या करेंगे?
तो उसको मान शान को उसको दे देंगे,
यानी हाँ दूसरे का चाहिए उसको।
तो दूसरे का उसका उसकी बुद्धि में शुभ भावना देंगे ना कि उसको नाम श्याम मानसी यानी वो मुक्त बन जाए, उसकी इच्छा न रहे उसको। नहीं, हाँ तो वो तो हम तो सीखेंगे मगर उसके लिए, उसके लिए तो शुभ भावना देंगे ना, हम सीख करके उसको और क्या कर सकते, फिर मनसा भी कर सकते ना उसको, ऐसे वाणी में तो हम कुछ कर नहीं सकते ना। यदि वो बताएंगे उसको सजेशन देंगे वो तो और भी भड़क जाएंगे आंधा। तो उसके लिए सूक्ष्म बाबा से भी यानी बाबा को द्वारे कुछ ले करके उसको दे सकते हैं हम तो कामना नहीं रखेंगे हमें मिले उसको, ऐसे उसको तो बाबा भी दे सकते, हम तो नहीं दे सकते ना।
आपसे चाहता है वो उमा मांझी, तो आप क्या करोगे? आप देते क्यों नहीं उसको मांझी?
हाँ तो हम दे सकते हैं उसको, दे देंगे उसको जो भी चाहिए वो दे देंगे, और ये भावना रखेंगे चलो पहले जन्म में उसने अपन को दिया होगा, अभी अपन रिटर्न में उसको दे रहे हैं, ऐसा अपने मन को सम ये करके उसको दे देंगे।
किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ लो।
अच्छा, ओम शांति।
सीधी सादी सब की मिटा।